జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుమీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపకదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణరఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాం సహగణలలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే వాంఛాకల్పతరూభ్యశ్చ కృపాసంధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. వ్యాసపీఠ పర ఉపస్థిత మాననీయ అతిథిగణ, శ్రీ నిరంజన్ వర్మ గురుజీ, శ్రీ ఉమేష్ చిండక్ అధ్యక్ష, శ్రీ ప్రదీప్ కల్కుప్పి సెక్రటరీ, శ్రీ శ్రీనివాస్ దేశ్పాండే ట్రెజరీ ఆర్ శ్రీమతి సాక్షి, గో గంగా గోశాల ట్రస్ట్, గో గంగా గోశాల ట్రస్ట్, శ్రీ గురుజీ నవరాత్ర ఉత్సవ మండల్, పంచగవ్య డాక్టర్ అసోసియేషన్ ఆర్ గోమాతా ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆయోజిత్ ఇస్ గో సంగమ్ కే అనుష్ఠాన్ మే హమే ఆకర్ ఆప్ సబ్కా సంగ ప్రాప్త హో రహా హై. యే మేరే లియే బహుత్ హీ సౌభాగ్య కీ బాత్ హై. శ్రీ సబర్ణా తల్వార్ జీ మహోదయ్ యే భీ హమారే బీచ్ మే ఉపస్థిత్ హై, తో ఆప్ సబ్ కే లియే హమారా హార్దిక్ సమ్మాన్ ప్రణామ్. ఔర్ యహాన్ ఇస్ గో సంగమ్ మే ఉపస్థిత్ ఆప్ సబ్ హమారే ప్రియ భాయి బహనో కే లియే భీ సాదర్ ప్రణామ్ ఔర్ నమస్కార్. యే గో సంగమ్ జైసే అనుష్ఠాన్ ఔర్ కార్యక్రమ్ ఇన్కా ఆయోజన్ దేశభర్ మే హోనా బల్కే విశ్వభర్ మే హోనా అతి ఆవశ్యక్ హై. యే గో యా గాయ్ కేవల్ హిందూ సభ్యతా ఔర్ సంస్కృతి కే లియే మహత్వపూర్ణ నహీ హై, యే సంపూర్ణ విశ్వ కే లియే మహత్వపూర్ణ హై. క్యూంకి గాయ్ కేవల్ హిందూఓ కీ మాతా నహీ హై, గాయ్ విశ్వ కీ మాతా హై, విశ్వ జననీ విశ్వ మాతా. ఇసిలియే గాయ్ ఔర్ గో రక్షా గో సేవా ఆది ఇన్కా మహత్వ సంపూర్ణ సృష్టి కే లియే హై ఔర్ కేవల్ పృథ్వీ కే లియే నహీ, ఐసే హమారే శాస్త్రో మే బతాయా గయా హై. శ్రీమద్ భాగవత్ కే అనుసార్ భీ ఇస్ బ్రహ్మాండ్ కే అందర్ ఏక లోక హై జహాన్ పే సురభి గాయ నివాస్ కర్తీ హై. స్వర్గలోకీయ సురభి గాయ, జబ్ భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ నే గోవర్ధన్ లీలా కీ థీ, జబ్కి దేవరాజ్ ఇంద్ర నే ఉన్కే ప్రియ వ్రజవాసీ భక్తోం కే ఊపర్ ఉపద్రవ మచాయా థా, శ్రీ కృష్ణ నే గోవర్ధన్ పర్వత్ ధారణ కియా థా ఔర్ అప్నే ప్రియ भक्तों को आश्रय प्रदान किया था। जब 7 दिन और 7 रात भगवान कृष्ण ने ऐसे गोवर्धन पर्वत धारण करके अपने भक्तों की रक्षा की तो इंद्रदेव का मान भंग हो गया। जब वो आना चाहते थे भगवान कृष्ण के सामने क्षमा याचना करने के लिए तो उनके मन में थोड़ा भय था। भय ये था कि उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति इतना बड़ा अपमान किया है, तब वो कैसे उनके सामने आ सकते हैं। वो सोच रहे थे कि मैं मेरे मुंह दिखाने लायक नहीं रहा और भगवान कृष्ण को इतना क्रोध आ गया होगा कि मैं कैसे जाऊं उनके सामने। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है गोपाल, गाय गायों का पालन करने वाले। उनका नाम है गोविंद, गोविंद अर्थात जो हमारे इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, और एक अर्थ है जो हमारे प्रिय गायों को प्रसन्न करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान का नाम है गोकुल या गोलोक। भगवान कृष्ण का प्रिय लीला स्थान है गोवर्धन पर्वत। ये सारे जितने नाम हैं ये गायों से संबंधित हैं। इससे हम जान सकते हैं कि गायों का महत्व कितना है। भगवान से प्रत्यक्ष संबंध गायों का है। यह मनुष्य समाज में हम सबके अपने अपने पेशे होते हैं, व्यवसाय नौकरी आदि होती है। कोई व्यापारी है, कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो क्या भगवान के भी ऐसे पेशे हो सकते हैं क्या? हाँ, भगवान गोपालक है। भगवान ने ये पेशा स्वीकार किया है और इसके द्वारा हमको सिखलाया है कि हमें भी गायों की रक्षा और सेवा करनी चाहिए। जब स्वयं भगवान ने इस कार्य को इतना महत्व दिया है, जब स्वयं भगवान के लिए गाय इतने प्रिय हैं, तो हमारे लिए भी कितने प्रिय होने चाहिए। मनुष्य समाज में गायों का महत्व केवल आर्थिक नहीं है। गोपालन या गोरक्षा के आंदोलन को यदि हमें सर्वव्यापी बनाना है, लोकप्रिय बनाना है, तो इस विषय को प्रत्येक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। सबसे मूल बात है आध्यात्मिक। हमारे शास्त्रों में भी कितना महत्व दिया हुआ है गायों के लिए। भक्ति के रास्ते में भी गायों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है वो अभी मैं संक्षेप में बता ही चुका हूँ। स्वयं भगवान प्रातः काल में गायों को चराने के लिए ले जाते थे, दिन भर उनके साथ में रहते थे। जब गायें यहाँ वहाँ वनों में चरती थीं और सायंकाल में गायों के साथ लौट के आते थे, तो भगवान कृष्ण का जीवन, उनकी दिनचर्या गायों के इर्द गिर्द हमेशा रहती थी। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हमारा जीवन सफल होता है। हम यहां संसार में किसी न किसी को प्रसन्न करने के पीछे लगे हैं। व्यापारी अपने ग्राहकों को प्रसन्न करना चाहते हैं जिससे कि उनका व्यापार अच्छी तरह से चले। जो व्यक्ति कहीं नौकरी करता है वो अपने मालिक को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है ताकि उसकी तनख्वाह अच्छी मिले। जो राजनेता होते हैं वो अपने प्रजा को संतुष्ट करना चाहते हैं ताकि अगली बार चुनाव में वो चुन के आ जाएं। अंततः ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि हम सब अपने इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि इंद्रिय सुख ही सच्चा सुख है, परंतु ऐसा नहीं है। ये इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है, इसके परे है आध्यात्मिक सुख, आनंद। और ऐसे आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए परम सत्य भगवान को प्रसन्न करना आवश्यक है, उनके आदेशों के अनुसार चलना आवश्यक है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गायों का कितना महत्व है। साधारण धार्मिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारी माता है। आध्यात्म और धर्म में क्या संबंध है और क्या अंतर है? दोनों का घनिष्ठ संबंध अवश्य है, क्योंकि धर्म की परिपूर्णता है अध्यात्म। परंतु धर्म के आध्यात्मिक और भौतिक स्तर दोनों होते हैं। हर एक व्यक्ति को, भले वो आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ हो या नहीं, उसे धर्म के अनुसार चलना चाहिए, धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बिना समाज में उत्पात हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे व्यक्ति इन धार्मिक नियमों का, कर्तव्यों का पालन करता है और इन कर्तव्यों में थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता भी आ ही जाती है, तो धीरे धीरे उसके चित्त का शुद्धिकरण होने लगता है, आध्यात्मिक जीवन की ओर रुचि बढ़ती है और वो समझ लेता है कि केवल संसार के कर्तव्यों का पालन करना उचित तो है, परंतु पर्याप्त नहीं है। हमें आगे चल के भगवान के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब हम आध्यात्मिकता को फिर गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। तो इस तरह से धर्म, साधारण धर्म और आध्यात्मिकता में ये संबंध है और थोड़ा बहुत अंतर भी है। साधारण हम संसार के धर्म की बात भी करें, जो कि महत्वपूर्ण है समाज में, तो हमारे घर में यदि हम अपने माता पिता का सम्मान न करें, अपने रिश्तेदारों का सम्मान न करें, तो फिर परिवार के भीतर उत्पात हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, अशांति फैल जाएगी। समाज में कुटुंब या परिवार ये बुनियाद है। कुटुंब सुखी रहा तो समाज सुखी रहेगा। कुटुंब में असंतुलन है, अशांति है, तो समाज में कैसे सुख और शांति हो सकती है? तो कुटुंब में जो हमारे लिए मूल उसूल या नियम या मूल्य होने चाहिए, उनमें से अनेक नियमों से एक ये है, हमारे जो वरिष्ठ हैं उनके प्रति हमें सम्मान की भावना रहनी चाहिए, विशेष करके माता और पिता। और जैसे कि हमारे अनेक शास्त्रों में बताया गया है, धर्मशास्त्रों में भी, रामायण आदि में भी, कि माता का महत्व पिता से भी अधिक होता है। यद्यपि दोनों महत्वपूर्ण हैं, फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो माता की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि 7 प्रकार की माताएं हमारी होती हैं। जैसे हमारी जन्म देने वाली माता जननी, वो तो हम सब जानते हैं, राजा की पत्नी हो, गुरु की पत्नी हो, हमारी पृथ्वी हो, ब्राह्मण की पत्नी हो, ये सारे माताएं होती हैं हमारे लिए। इन माताओं के दल में, वृंद में गो माता भी है। गो या गाय हमारी माता है। जिस माता ने हमें जन्म दिया है उनके प्रति निरंतर हमें आभार होना चाहिए। उन्होंने न केवल हमको जन्म दिया, हमारे लिए उन्होंने हर प्रकार की सुविधा प्रदान की, हमें संरक्षण दिया, हमें खिलाया पिलाया, शिक्षण दिया, आश्रय दिया, प्रेम दिया, सब कुछ दिया पिताजी की सहायता से। तो माता हमें दूध पिलाती है जन्म से, थोड़े समय के लिए हम हमारे जन्म प्रदाता माता का दूध पीते हैं, परंतु जब हमारी आयु बढ़ जाती है फिर माँ का दूध हम नहीं पीते हैं। परंतु देखिए, गाय ऐसी माता है जिनका दूध हम जीवन भर पीते हैं। तो फिर हम समझ सकते हैं कि गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो यदि हम घर में माता का तिरस्कार करते हैं तो धार्मिक नियमों के अनुसार हमारी बहुत ही गलत कार्य हमारे हो जाएंगे, पाप कर्म हो जाएंगे, अधोगति हो जाएगी, हमारी नारकीय अवस्था बन जाएगी। आजकल ये देखा जा रहा है कि समाज में लोग अपने माताओं के का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आए दिन ऐसे वीडियो दिखने में आते हैं, लड़के भी युवक अपने माता के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। तो ये सब कलयुग के लक्षण हैं। तो ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का स्थापन करना बहुत आवश्यक है। तो जिस प्रकार से घर की माता का सम्मान यदि हमने नहीं किया तो कितना उपद्रव मच सकता है समाज में, उसी प्रकार से विश्व माता गो माता का सम्मान यदि हम नहीं करेंगे, सम्मान की बात तो दूर रही, उनके प्रति हम तिरस्कार करेंगे, उनकी हत्या करेंगे, तो फिर समाज की क्या दशा होगी और है, वो तो हमारे आंखों के सामने है। हमारे संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हम गाय और बैल को प्रसन्न रखें तो संपूर्ण मनुष्य समाज सुखी हो सकता है। इस एक सरल सूत्र को न जानने के कारण मनुष्य समाज में इतनी अशांति और उपद्रव पाया जाता है। तो देखिए कितना सरल सूत्र है हम सबके लिए, गाय और बैल को प्रसन्न रखना है, और ऐसा करने से संपूर्ण मनुष्य समाज प्रसन्न रहेगा। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सत्य और तथ्य सबसे सरल होते हैं। हमें बहुत कोई बड़ा दार्शनिक या ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है इस सरल बात को समझने के लिए, बच्चा भी समझ सकता है। पहले मैं कह रहा था कि हमारी वृत्ति है कि किसी न किसी को हम प्रसन्न रखें, तो क्यों ना गायों और बैलों को प्रसन्न रखें। और ऐसे करने से वास्तव में कुटुंब प्रसन्न रहेगा, समाज प्रसन्न रहेगा, देश प्रसन्न रहेगा, संपूर्ण सृष्टि प्रसन्न रहेगी। तो गोपालन या गोरक्षा के आंदोलन में हमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, केवल गायों को जीवित रखना, उनको हत्या से बचाना इतना पर्याप्त नहीं है। यद्यपि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, अति महत्वपूर्ण कार्य है। यदि हम उनकी हत्या कर रहे हैं तो फिर किस प्रकार का प्रेम है हमारा उनके प्रति, हम उनको कैसे प्रसन्न कर रहे हैं यदि हम उनको हत्या होने से बचाए नहीं। तो ठीक है, ये बहुत आवश्यक है, परंतु केवल उनको मृत्यु से बचाना इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब हम गायों का पालन करेंगे, गायों की सेवा करेंगे, हमारे घर में हो, हमारे खेत में हो, हमारे गौशाला में हो, तो उनको प्रसन्न रखना भी बहुत आवश्यक है। कैसे रखेंगे प्रसन्न, कई चीजें हैं इसमें। एक तो उनसे प्रेम करना चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे शहर में रहने वाले कोई लोग हो, हमारा बर्ताव गायों और बैलों के प्रति प्रेम का होना चाहिए। बैलों को के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी प्रहार नहीं करना चाहिए, दुर्भाग्य से हम देखते हैं आज ऐसे होता है। गांव गांव में हम बहुत घूमते हैं, गांव में रहने वाले लोग भी गायों के ऊपर और बैलों के ऊपर प्रहार करते हैं। भले गायों के ऊपर इतना न हो, परंतु बैलों के ऊपर तो प्रहार बहुत करते हैं। तो बैलों के ऊपर भी हो तो यद्यपि बहुत कठिन होता है बैलों को संभालना, फिर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जहां हमने गाय और बैल के प्रति बड़े प्रेम से व्यवहार किया, हम उनके साथ बात करें जैसे हम अन्यों के साथ, मनुष्यों के साथ बात करते हैं, हम उतना ही उनके साथ प्रेम करें जितना हमारे परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं, तो फिर गाय और बैल हमारे लिए केवल गाय और बैल नहीं रहेंगे, वो हमारे लिए बहुत ही प्रिय परिवार के सदस्य रहेंगे। जितना हम गाय बैलों के प्रति प्रेम दिखलाएंगे, वैसे वो भी हमारे प्रति प्रेम दिखलाएंगे। एक घटना है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं हर बार जब भी गाय के ऊपर बात करता हूँ तो ये घटना अवश्य सुनाता हूँ, क्योंकि श्रोतागण अलग अलग होते हैं, उन्होंने हर बार ये सुनी नहीं होती है। कई साल पहले की बात है, 20-25 साल भी शायद हुए होंगे, तो दिल्ली में ऐसे कृषि और गोपालन के ऊपर कोई ऐसे एक शिविर का आयोजन किया था सरकार ने, तो देश भर से किसान आए थे और सब ने अपने अपने पास जितने भी चीज़ें हैं वो सब लाई थी। वहाँ बड़े बड़े ट्रैक्टर भी थे खेती के लिए, बहुत सी चीज़ें थी सामने। तो एक महाराष्ट्र का किसान वहाँ गया था, वो अपने खिलाड़ बैल लेके गया और वो खिलाड़ बैल वहाँ पर थे, तो एक केंद्रीय मंत्री थे जो भी महाराष्ट्र के थे, तो वो आए घूमते घूमते उनके पास आए, उन्होंने देखा कि ये महाराष्ट्र का कोई किसान है, तो मराठी भाषा में बोलने लगे और उनसे कहा कि अरे अभी तक आप गाय बैल से ही अटके हुए हो, हम आपको ट्रैक्टर दिला सकते हैं, फिर ये गाय बैल की कोई आवश्यकता नहीं होगी, हम आपको लोन दिला देंगे, कर्ज दिला देंगे बैंक से, हम आगे लिखेंगे तो बैंक आपको लोन दे देगा, फिर आप ट्रैक्टर खरीदिए, बहुत प्रगति करिए, आपकी आर्थिक प्रगति हो जाएगी। तो उस किसान ने कहा कि नहीं नहीं, हमें ये ना तो कर्ज चाहिए, ना तो हमें ट्रैक्टर चाहिए, ना हमें इस तरह से समृद्ध होना है कि हमारे गाय बैलों को ही हम त्याग दें, ऐसी समृद्धि हमें नहीं चाहिए। तो फिर मंत्री ने उनसे पूछा, अरे तो आप ये क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते हैं ट्रैक्टर को, बैल का क्या काम है अभी, बैल की जगह जो है 10 बैलों का काम एक ट्रैक्टर कर सकता है, तो ये ट्रैक्टर को ले लो, क्यों नहीं लेना चाहते हो। तो उस किसान ने एक ऐसा उत्तर दिया जिसको सुनकर वो मंत्री अवाक रह गए, चुप रह गए, कुछ नहीं बोले, वहां से तुरंत चले गए। वो क्या था जो कि उस किसान ने बोला? वो किसान ने बोला, महोदय ट्रैक्टर मुझसे प्रेम नहीं कर सकता। ये एक वाक्य बोला, तात्पर्य क्या था कि मैं बैल से प्रेम करता हूं और बैल मुझे भी प्रेम करता है, इसलिए ये मेरा परिवार का सदस्य है, ये तात्पर्य था। परंतु एक संक्षिप्त वाक्य में किसान ने यह बोल दिया कि ट्रैक्टर मुझसे प्रेम नहीं कर सकता। बल्कि आजकल हम देखते हैं कि ट्रैक्टर आदमी की आत्महत्या के कारण भी बन जाते हैं, इतने सारे वो लोन लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं बैंक से, यहां से वहां से, तरह तरह के कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक खाद आदि खरीदने के लिए, फिर ट्रैक्टर खरीदने के लिए, और ट्रैक्टर को संभालने के लिए फिर डीजल डालना होता है, कितना खर्च होता है, तरह तरह के और आधुनिक यंत्र भी ले आते हैं, और इधर फिर वो कर्जा चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो ये हमारे सभ्यता में संबंध हुआ करता था किसान और गाय बैल के बीच में। जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी परिवार में, घर के गाय बैल के आंखों से भी आंसू आते थे, वो भी रोते थे, वो भी परिवार के दुख सुख में सहभागी होते थे। तो हमारी सभ्यता में गाय को कभी कोई केवल एक पशु नहीं माना जाता था, वो परिवार का सदस्य माने जाते थे। एक माता और पिता का सम्मान उनको दिया जाता था। हाँ, आजकल ये परिस्थिति कितनी बदल गई है, तो आजकल हम गाय के प्रति, बैल के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं और कभी कभी प्रहार भी करते हैं। सारा समय उनको बांध के ही रखते हैं, बांधते भी है तो रस्सी इतनी छोटी होती है, बेचारा हिल भी नहीं सकता है। उनको खुला छोड़ना चाहिए थोड़ा बहुत। ये भी क्रूरता है जब उनको 24 घंटे बांध के रखेंगे। यद्यपि हमारे पास ज़्यादा जगह भी ना हो, कम से कम थोड़े जगह में तो वो घूमें। हमें यदि कोई 24 घंटे बांध के रखे, हमें कैसा लगेगा? कोविड में, कोरोना के समय, महामारी के समय हम सबको अनुभव है, थोड़े दिन घर में बंद के रखना पड़ा, क्या हमारी दशा हो गई। तो जब हम कहते हैं कि गायों से प्रेम करना चाहिए, गायों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो ये सारे चीज़ें हमें करनी चाहिए। गायों को चराने के लिए भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, और इसके बारे में मैं एक दो मिनट के बाद भी चर्चा करूँगा। साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि जब हम गाय के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करने की बात करते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गायों के जो बछड़े होते हैं, उनको भी पर्याप्त मात्रा में माँ से दूध पीना चाहिए। ऐसे देखा जाता है कि दूध के लालच में, अपनी आर्थिक परिस्थिति के सुधारने के लालच में, पैसे कमाने के लालच में, जो किसान और बड़े बड़े डेयरियों, फैक्ट्रियों में ऐसे होता है, वो केवल थोड़े समय के लिए थोड़े दूध को पिलाते हैं बछड़े से, फिर बछड़े को माँ से अलग कर देते हैं और अधिक मात्रा में दोहन करते हैं गाय का, और फिर उसे बेच देते हैं। हाँ, उसके बाद दूध में बहुत कुछ मिलाते भी हैं, पानी भी, ये भी, वो भी, वो अलग बात है। लेकिन यदि हमने बछड़े को, जो उसका अधिकार है, वो नहीं दिया, तो ये भी बड़ी क्रूरता है। जैसे कि मनुष्यों में भी यदि बच्चे ने, बालक ने अपने माँ का दूध नहीं पिया, माँ से हमने दूर रखा बालक को, तो क्या ये बड़ी हिंसा नहीं होगी? क्या ये क्रूरता नहीं है? इसके अतिरिक्त, क्योंकि वो माँ का दूध नहीं पिएगा, तो फिर वो कमज़ोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, वो हृष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, और आगे चल के भी कमज़ोर ही रहेगा, और उसकी हड्डियाँ आदि सब कमज़ोर रहेंगी, फिर तरह तरह के रोग आदि सब होने लगेंगे उसके अंदर। तो उसी प्रकार से हमने बछड़े को यदि माँ का दूध पीने के लिए अवसर नहीं दिया, उनको अलग कर दिया हमने, तो फिर बछड़े भी, चाहे वो गाय हो या बैल, वो तंदुरुस्त नहीं रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थी भी हो, स्वार्थ के दृष्टि से कम वो सोचे, तो वो सोचेगा कि हाँ, कम से कम बच्चे को तो दूध पीना चाहिए, देना चाहिए, जिससे कि आगे चल के वो गाय बनेगी, हृष्ट पुष्ट बनेगी, ताकि ज्यादा दूध देगी। इतना भी नहीं सोचते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। हमने तो गायों को केवल दूध बनाने का एक मशीन बना रखा है, एक यंत्र। ये किस प्रकार का प्रेम हो गया? तो गोपालन कहाँ रहेगा हमारे लिए? तो बछड़ों का देखभाल करना अति आवश्यक है। प्रहार नहीं करना, क्रूर नहीं होना गाय बैलों के साथ, इसके लिए और एक बात है कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक पदार्थों का इंजेक्शन आदि नहीं देना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, और फिर उनके आहार में तरह तरह के मछली और ऐसे मांसाहार वगैरह सब भर देते हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे अच्छी होंगी गाय बैल के लिए। आजकल क्या हो रहा है कि गाय बैलों को विदेशों में भी और भारत में भी लोगों को ऐसे चीज़ों को खिलाया पिलाया जा रहा है ताकि उनका दूध उत्पादन बढ़े, उसके अंदर गाय के अंदर जो परिवर्तन होते हैं स्वास्थ्य के, और फिर ये सारे रासायनिक पदार्थ आदि दूध के अंदर से भी आ जाते हैं ना, और इसलिए तरह तरह के नकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं। आजकल ये एक लैक्टोज इनटॉलरेंस नाम से एक चीज़ है, जो कोई लोग दूध पीते हैं तो उनको तरह तरह के रोग होने लगते हैं, एलर्जी जैसे हो जाती है। तो ठीक है, कोई विरला यहाँ वहाँ कोई जिसके अंदर वो जन्म से रोग हो वो अलग बात है, परंतु ये ऐसे रोग बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि लोग इस तरह का दूध पी रहे हैं जिसको पाने के लिए गायों को ऐसे सब चीज़ें खिलाई पिलाई जाती हैं, तो रोग तो होंगे। फिर ऐसे भी एक महामारी हुई थी जिसे कोरोना के थोड़े साल पहले, जिसको मैड काउ डिजीज़ कहते हैं, पागल गाय बीमारी। तो वास्तव में ये पागलपन गायों का नहीं है, ये मनुष्यों का है। ये मैड काउ डिजीज नहीं बोलना चाहिए, ये मैड मनुष्य डिजीज बोलना चाहिए। मनुष्य मैड हो गया, पागल हो गया है, क्योंकि गायों के प्रति इतना दुर्व्यवहार करता है, इसलिए सब ऐसे बीमारियां होने लगती हैं समाज में, दुनिया में। साथ साथ में बैलों के प्रति भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे जब उनको काम में लगाते हैं तो सीमा के भीतर लगाना चाहिए। हाँ, बैलों के लिए काम करना आवश्यक है क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति रहती है, ऐसे ही बस उनको रखेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा काम करा लीजिए, बैलगाड़ी चला लीजिए, और बहुत सी चीज़ें घानी आदि है जिससे हम बहुत कुछ उत्पादन भी कर सकते हैं, परंतु सीमा के भीतर रखिए। अति परिश्रम न हो बैल के लिए, उसको भी आराम मिलना चाहिए, उसको भी बीच बीच में पर्याप्त पानी आहार आदि मिलना चाहिए। तो ऐसे गोरक्षा के तात्पर्य ये बहुत गहरा है। तो बछड़े का देखभाल करना चाहिए, बछड़े को दूध देना चाहिए, तरह तरह के अवांछित चीज़ों को नहीं डालने चाहिए उनके आहार में, इस तरह के इंजेक्शन नहीं देने चाहिए, अति काम उनसे नहीं लेना चाहिए, उनको दिन भर बांध के नहीं रखना चाहिए, प्रहार नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें गाय को प्रेम करने के अंतर्गत आती हैं। तो गौशाला हो या किसान हो, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। विषय बड़ा लंबा है इसलिए मैं और विस्तार में इस बारे में नहीं कहूँगा, परंतु एक महत्वपूर्ण बात अवश्य मैं कहना चाहता हूँ, और वो है कि जब तक किसान गाय की रक्षा नहीं करेगा तब तक गोपालन का आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। हम जितने भी गौशालाएँ बनाएं, अच्छी बात है, बनाने भी चाहिए, परंतु वो पर्याप्त नहीं हो सकते, क्योंकि मुख्यतः गाय बैलों का स्थान ग्रामीण भाग में है। वहाँ पे बैल खेत में काम करेंगे, गौमाता भी चरने जाएंगी, भले अलग अलग चराने ले जाएं, परंतु चरना दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी किसानों को अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, इसलिए वो लोग गायों को बेच रहे हैं। तो हमें ये देखना आवश्यक है कि गायों को बेचने के लिए बाध्य क्यों हो रहे हैं किसान। तो गाय बैलों के जो उत्पादन हैं उनसे तरह तरह के पदार्थ हम बनाते हैं, यहाँ प्रदर्शनी हम देख रहे हैं नीचे, और यहाँ भी चर्चाएं हो रही हैं और होंगे भी, तो बहुत सी चीज़ें बना सकती हैं, और इसके ऊपर हमारे अनेक माननीय प्रवक्ता बात करेंगे, इसलिए मैं इस विषय पर नहीं बोलूँगा। तो उनके गोबर से हो, गौमूत्र से हो, उनके श्रम से हो, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। किसान को एक आर्थिक सहायता या बुनियाद प्रदान करने के लिए परंतु सबसे जो बड़ा खर्च किसान को झेलना पड़ता है वो है चारे का। वैसे और भी बड़े खर्च हैं, और पहले के ज़माने में क्या होता था, गोचर भूमि होती थी। मैंने इस कथा के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया कि वो गाय सुबह को ले जाते थे, शाम को आ जाते थे, जब गाय पेट भर के चर के खा जाते थे। परंतु आजकल ऐसे गोचर भूमि नहीं रही। भगवान कृष्ण को पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी गोपालन के लिए, मुफ्त था सब कुछ। एक वन में आज गए चरने के लिए गायों को, दूसरे दिन दूसरे वन में, तीसरे दिन तीसरे वन में, इस प्रकार से अनेक वनों में चर चर के फिर पहले वन में पुनः आ जाते थे, जब तक कि घास वहां उग चुका होता था। नंद महाराज जो श्री कृष्ण के पिता थे, उनके पास 900,000 गाय थे, कोई एक पैसा खर्च नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इतनी गोचर भूमि उपलब्ध थी वहां पे। तो यदि हमें गोपालन या गो सेवा, गो रक्षा के आंदोलन को बहुत सुदृढ़ बनाना है, तो गोचर भूमि, जिसको हमें हम यहाँ गायराण भी कहते हैं, उसकी रक्षा भी करना अनिवार्य है। इसके बिना ये बहुत कठिन होगा, कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होगा। गायों का काम है चरना, बैलों का काम है चरना। फिर जब वो लौट के आएंगे, यदि और उनको कुछ खिलाना पिलाना पड़े वो ठीक है, अच्छी बात है। तो जब गाय बैल चरते हैं, उनको ताज़ा घास मिलता है जिससे उनका पोषण होता है, तरह तरह के वनस्पतियाँ जिनके औषधि गुण होते हैं उनको भी खा लेते हैं, उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है, और चलने फिरने के कारण कसरत हो जाती है, इसलिए उनका स्वास्थ्य और भी अच्छा रहता है। इसलिए गायों को चराना, बैलों को भी चराना बहुत आवश्यक है। लेकिन चराने के लिए जगह हो तब। अभी बेलगाम शहर में भी हम देखते हैं गाय बैल यहाँ चरते हैं, इधर उधर चरते हैं, परंतु क्या खाते हैं? कूड़ेदान में जो प्लास्टिक के थैलियाँ होते हैं वही खा जाते हैं, उनके पेट में चली जाती हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारे एक भक्त थे, वो बताते थे, जो गायों के चिकित्सक थे, एक बार उन्होंने पेट शरीर काटा था एक मरे हुए गाय का, पेट में से इतने सारे प्लास्टिक के थैलियाँ निकली। और गांव में भी ऐसे यहाँ वहाँ वो चरती हैं, कोई चरने की जगह नहीं है। पहले कानून में ऐसे व्यवस्था थी कि जगह निर्धारित रखी जाती थी गायों को चरने के लिए, गोचर भूमि हर एक राज्य में भारत में ऐसे हुआ करता था। परंतु अभी इतना अतिक्रमण हुआ है इस गोचर भूमि का, सरकार के द्वारा भी, केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, और फिर बहुत जो लोभी उद्योगपति हैं या किसान हैं, गाँव के रहने वाले लोग भी अतिक्रमण कर लेते हैं। अभी गाय को चराने के लिए जगह नहीं रही, तो इसलिए बहुत आवश्यक है, यदि हमें आर्थिक दृष्टि से किसानों के लिए अनुकूल परिस्थिति बनानी है गाय और बैल की रक्षा करने के लिए, तो हमें गोचर भूमि को सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बिना ये कार्य बहुत ही कठिन होगा। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो खैर, चंद थोड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने बताना चाह रहा था। साथ साथ में यदि हमने खेती भी अच्छी तरह से जैविक पद्धति से की, तो फिर किसान गाय और बैल का महत्व समझेगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जो व्यापार के कार्य में रहते हैं उनके लिए ये तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य समाज में अर्थव्यवस्था के तीन खंभे हैं। यदि ये तीन खंभे सुरक्षित रहे, सुदृढ़ रहे, तो अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ रहेगी। वो है कृषि, दूसरा है वाणिज्य, तीसरा है गोरक्षा। यदि हम चाहते हैं कि केवल गो रक्षा करें, उसके साथ में खेती न करें, वाणिज्य न करें, तो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। हम केवल खेती करें लेकिन गाय का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर भी ठीक नहीं होगा, असंतुलन आ जाएगा, तरह तरह के और समस्याएं आ जाएंगी। इसलिए यदि हमारे अर्थव्यवस्था को सुधारना है और सुदृढ़ करना है, संतुलित करना है, तो तीनों के ऊपर ध्यान आवश्यक है। अभी तरह तरह के गोबर आदि से निर्मित जो उत्पादन किया जा रहा है, जिनको हम नीचे भी हमने देखा, ये व्यापार व्यवसाय है, वाणिज्य, ये भी आवश्यक है। गोपालन तो हो ही रहा है, अभी खेती कृषि भी जैविक पद्धति से हो, गाय बैलों का संबंध खेती से बना रहे, तब गायों की भी रक्षा होगी, बैलों की भी होगी, खेती की रक्षा भी होगी, किसानों की रक्षा होगी। हम गाय बैलों का हित किसान के हित से अलग नहीं कर सकते। यदि हम किसानों का हित चाहते हैं तो कृषि गोरक्षा होनी चाहिए, गोरक्षा करना चाहते हैं तो किसानों का हित होना चाहिए, कृषि आदि का भी हित होना चाहिए। तो इस संपूर्ण चित्र को ध्यान में रखते हुए हमें ये गोपालन के आंदोलन को देखना है। ऐसे हमारे मान्यता है, जो कि शास्त्रों पर आधारित है, हमारे गुरुजनों ने कहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सबके समक्ष आकर कुछ ऐसे दो शब्द बोलने का सुअवसर मुझे मिला। हमारे यहाँ इस मंच पर ने सम्माननीय व्यक्ति बैठे हैं जो बहुत जानकार हैं, हमसे अधिक उनका अनुभव है, ज्ञान है, और प्रत्यक्ष उन्हें इतना योगदान किया है, और आप सब भी इस कारण से, इस मार्ग से बहुत जुड़े हुए हैं, तो आप सबको हार्दिक धन्यवाद, मेरा आभार। और जिन्होंने ये सारी योजना की है इस अनुष्ठान के लिए, विशेष करके आप सबको हार्दिक धन्यवाद और आभार। गो माता की जय। हरे कृष्ण।
दूर कर दो।